ओम शांति। 15 दिसंबर 2010 की अव्यक्तवाणी से दुख और अशांति चारों ओर भिन्न भिन्न स्वरूप में बढ़ रही है, उसके लिए पवित्रता का वाइब्रेशन आवश्यक है। दुख अशांति का कारण अपवित्रता है, तो अपवित्र आत्माओं को और भक्त आत्माओं को अभी डबल सेवा चाहिए। वाणी की सेवा तो बाप दादा ने देखा कि चारों ओर धूमधाम से चल रही है, अपना उलाना भी निकल रहा है, लेकिन अभी आत्माओं को एक्स्ट्रा सकाश चाहिए। वह है मनसा सेवा द्वारा सकाश देना, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना। तो इस समय डबल सेवा की आवश्यकता है। इसके लिए बाप दादा ने कहा है, हर एक बच्चा अपने को क्या समझे, हर एक बच्चा अपने को शक्तिशाली क्या समझे, सुखदाता समझे, और क्या समझे, पूर्वज और दाता, और क्या समझे, आत्माओं को हिम्मत देना, सकाश देना, उमंग उत्साह देना, इस सेवा की आवश्यकता है। तो अपने को पूर्वज समझे। आप इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन पूर्वज और पूज्य आत्मा हो। बाप दादा तो दुखी आत्माओं का आवाज सुनते रहते हैं। आप बच्चों के पास उन्हों के पुकार का आवाज पहुंचना चाहिए। जितना संपूर्ण पवित्र आत्मा बनेंगे, बन रहे हैं, बने भी है, लेकिन साथ साथ अभी मनसा सेवा को बढ़ाना है। आज विश्व में सुख शांति संतोष आत्माओं में कम हो रहा है, तो आप परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को अभी प्यार की, संतुष्टता की, खुशी की अंजलि देने की आवश्यकता है। दुखियों को सुख की अंजलि देनी है। एक तो मनसा सेवा द्वारा सकाश दो, और दूसरा अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अभी जो सेवा कर रही हो, कर रहे हो, और ही बाप दादा और की है, बाप दादा खुश है कि सेवा में चारों ओर उमंग उत्साह है, लेकिन अभी एक सेवा रही हुई है। अभी तक यह आवाज तो हुआ है, कौन सा आवाज, संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, और क्या अच्छा कर रहे, ज्ञान अच्छा देती है, और कार्य अच्छा कर रहे है, क्या कि ब्रह्मा कुमारी या मनुष्य आत्मा को अच्छा बना देती है। यह जो अशुद्ध व्यवहार है, अशुद्ध व्यवहार से मुक्त कर देती है। जो गवर्नमेंट चाहती है कि यूथ ग्रुप के लिए, वह सेवा बहुत अच्छी करते रहते, लेकिन अभी बाप आया है, परमात्मा आ गया, परमात्मा ज्ञान यह दे रही है, मेरा बाप बरसा देने आ गया। अभी बाप की तरफ नजर जाने से उन्हों को भी परमात्मा प्यार, परमात्मा की आकर्षण आकर्षित करेगी। अच्छा अच्छा तो हो गया है, लेकिन परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता आकर्षित कर अच्छा बनाएगी। तो अभी बाप की तरफ पहचान, जिसको याद करते हैं वह ज्ञान, वह वर्षा मिल रहा है। तो अभी मनसा द्वारा बाप के समीप लाओ, अपने चेहरे और चलन द्वारा अपने आपके नैनों में बाप प्रत्यक्ष हो। तो अभी यह आपस में प्लान बनाओ। तो क्या सुना, दो बातें बाबा ने कही, एक तो स्वयं को पूर्वज समझने की, और दूसरा बाप को प्रत्यक्ष करने की। 15 मार्च 2010 की मुरली है। तो आत्माएं कैसी है इस समय, दुखी है, अशांत है, निर्बल है, शक्तिहीन है, बल नहीं है, संतोष नहीं है, उमंग उत्साह नहीं है, हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, और भक्त आत्माएं और दूसरा ये सारी आत्माएं, तो इनको डबल सेवा की आवश्यकता है। तो अपने आप को क्या समझो, पूर्वज। भगवत की क्या परिभाषा है? बाबा पूर्वज किसको कहते हैं? अच्छा, जो अनुभवी है वो उसको बाबा कहते हैं। चलो वो भी है, जो अनुभवी है वो पूर्वज है। और पूर्वज कौन है? जो बड़े हैं, जो पालना करने वाले हैं। और पूर्वज कौन है? मैच्योर्ड, जिनमें परिपक्वता है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, जिनमें आध्यात्मिक परिपक्वता है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। ये जो है चीज, ये एक बहुत अच्छा शब्द है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। ज्ञान कितने दिनों से है, कितना योग किया, कितनी क्लासेस की कराई, ये एक तरफ। दूसरा है मैच्योरिटी, मैच्योरिटी कितनी है अध्यात्म में, अध्यात्म का सार जीवन में कितना झलक रहा है। और पूर्वज किसको कहेंगे? जिनमें रहम दिल का संस्कार है, रहम भाव है, वो पूर्वज है। और वसुधैव कुटुंबकम की जिसमें भावना है, सब मेरे हैं, सब हमारे हैं, सब एक ईश्वरीय परिवार है, ये भावना। और जो दाता है वह पूर्वज है। और बाबा पूर्वज किसको कहते हैं? माता पिता का संस्कार जिनमें है, पालना करने का संस्कार है, माता है वो, जगत पिता और जगत माता का जिनमें संस्कार है। मैं जगत पिता हूँ और मैं जगत माता हूँ, तो आत्माओं की पालना करने का, सस्टेनेंस देने का जिनमें संस्कार है। और सबको उनकी कमी को पूरा अंदर संभाल लेना और दूसरों को आगे बढ़ाना, ये पूर्वज आत्मा है। और शब्दशः अर्थ, जो सबसे पहले इस धरती पर आए वो पूर्वज, जिनका आगमन बहुत पहले हुआ है। जैसे हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर पहले आते हैं ना, फिर हम आते हैं। तो जो इस सृष्टि पर सबसे पहले आए, जिन्होंने सबसे पहले धर्म की स्थापना की, जिनके द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ है, सृष्टि की स्थापना हुई है, वो आत्माएं। बाकी सभी धर्म की आत्माएं बाद में आई, तो वो सब एक रीति से छोटे हैं। परंतु उस दिन मुरली में कहा था ना, बाबा को भी आश्चर्य है, जो भारतवासी है वो कहां आकर्षित हो रहे हैं? अल्पकाल की प्राप्ति, अल्पकाल के साधन, वो जो वो लोग छोड़ रहे, जो बाद में आई है आत्माएं, पिछली पिछड़ी में आई हुई धर्म की आत्माएं, ये जो आत्माएं है वो अभी आई है, नई आत्मा। तो हम पहले आए हुए हैं, ये पूर्वज की सबसे पहली परिभाषा है। पूर्वज अर्थात जो पहले आए, प्रोजेनिटर्स, फोर फादर्स, एंसेस्टर्स। तो हम वो एंसेस्टर्स आत्माएं हैं, वो पूर्वज आत्माएं हैं। और पूर्वज किसको कहेंगे? नहीं नहीं, हम जो सभी पूर्वज आत्माएं हैं उसकी क्या परिभाषा है? पूर्वज में क्या चीजें होती है? बड़ों में परिस्थितियों में घबराते नहीं है, अनुभव होता है उनके पास, छोटे छोटे घबरा जाते हैं। जिन्होंने चीजें देखी नहीं है, उन्होंने सब देखा हुआ होता है, इसके लिए वो बहुत स्टेबल रहते हैं, हलचल में नहीं आते चलते, जल्दी कोई चीज से उनको भयभीत नहीं होते, डरते नहीं है। तो अनुभव होता है उनके पास। और क्या होता है? आदत देते हैं, साहस देते हैं, पेशेंस देते हैं, पेशेंस में लाते हैं, मार्ग बताते हैं, गाइडेंस करते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, दूसरों को गाइड करते हैं। क्यों गाइड कर सकते हैं? अनुभव, क्योंकि वो उससे गुजरे हुए हैं। वो कोई शायरी जैसा है ना, शब्द तो नहीं है, पर वो कहता है कि मैं तुम्हें मार्ग बताता हूँ या राह बताता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं बहुत होशियार हूँ, क्योंकि ठोकरे मैंने तुमसे ज्यादा खाई या गलतियां मैंने तुमसे ज्यादा की है, इसलिए। तो गलतियां मैंने तुमसे ज्यादा की है इसलिए मैं तुमको समझा सकता हूं। तो बड़े जो होते हैं वो बहुत अनुभवी, बहुत परिपक्व, बहुत स्टेबल, शांत रहते हैं, ज्यादा हलचल नहीं करते, संतुष्टता, धैर्यता ज्यादा होती है। संतुष्टता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है बड़ों में। आदर्श, हाँ, वो आइडियल होते हैं एक रीति से, उनको देखकर सीखते हैं छोटे। वो दूसरी बात है कि कभी कभी बड़े अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं, वो सोचते हैं कि इनको क्या पता, जनरेशन गैप, ये आउटडेटेड है पूरा, इनके कॉन्सेप्ट ही आउटडेटेड है पूरे। काल भाई है। तो वो मार्क ट्वेन करके एक ऑथर है, उसने लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है। वो लिखता है कि जब मैं 20 साल का था ना, तो मेरे पिता बिल्कुल, मतलब समझता था एकदम बुद्धू है, इनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, जहां जो भी करता हूँ इनका जो भी है सब गलत। 20 साल का जब मैं था तो मेरे पिताजी को कुछ भी समझ में नहीं आता था। जब वो 20 साल का था तब उसके पिताजी बिल्कुल बुद्धू थे। वो लिखता है अभी 20 साल के बाद जब मैं 40 साल का हो गया हूँ, इन 20 साल में मेरे पिताजी ने कितनी उन्नति कर ली है, कितने होशियार हो गए वो, कितने मैच्योर हो गए। मैच्योर वो नहीं, ये हुआ है अब। वो तो थे ही। तो ऐसा लिखता है। तो बड़े जो होते हैं, मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी, पेशेंस, इमोशनल मैच्योरिटी होती है उनमें। छोटे होते हैं ना, फटाफट रोना धोना वो सब चालू करते थे, किसी ने कुछ कहा बस खड़े ही है, जैसे तैयारी है रोने के लिए। सेंसिटिव माइंड होता है। अच्छे लड़ोल समा नहीं सकते। हाँ, दूसरा एक गुण होता है समाने का। 10 लोग आके 10 चीजें कहते हैं, अंदर ही अंदर समा लेते हैं। ऐसे नहीं, उसने मुझे वो कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, उसको पकड़ नहीं लेते कोई चीज को, और याद रखना उसको और फिर दूसरों को बताना। ठीक है, कितनी सारी बातें होती रहती है दिन भर में, सब समा लेना। चाकू फेंको समुन्दर में, ऊपर से पता ही नहीं चलता है कि थोड़ी देर पहले चाकू किसी ने फेंका था। वो अंदर चला जाता है। तो पूर्वज अर्थात ये सारी गुण उनमें होने चाहिए। तो हम वो पूर्वज आत्माएं इस सृष्टि के। फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम तो उस देश में गए नहीं, हम पूरी सृष्टि के पूर्वज आत्मा है। ये विदेशी वहां से आए हैं, हमें तो पता ही नहीं, हम इनके भी पूर्वज है क्या? चाहे किसी भी देश का हो, चाहे किसी भी संस्कृति का हो, चाहे किसी भी भाषा का हो, हम सभी मनुष्य सृष्टि के, कंप्लीट ह्यूमैनिटी के हम फादर हैं, फोर फादर हैं, प्रोजेनिटर हैं, एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं। तो ये है पूर्वज की परिभाषा, डेफिनेशन। दूसरा है डी, ड्यूटीज, हमारे कर्तव्य क्या है। फिर यहाँ तो कुछ बातें बोल दी है बाबा ने, क्या करना है उनको, दुख शांति को दूर करना है, कल्प वृक्ष का फाउंडेशन आप हो, दुखी बच्चों का आवाज बाबा सुनते रहते हैं, उनकी पुकार सुनते रहते हैं, और सब दुख शांति का कारण अपवित्रता है। तो आप क्या करो, संतोष कम है आत्माओं में, सुख शांति कम है, तो आप परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को अभी प्यार की, संतुष्टता की, खुशी की अंजलि देने की आवश्यकता है। दुखियों को सुख की अंजलि देनी है। तो हमारे कर्तव्य क्या है? कई बार तो हमने इस प्रश्न का उत्तर निकाला है। पूर्वज आत्मा अर्थात क्या करना है उसे? पहले तो एक जॉइंट फैमिली है, उसमें बड़े है कोई, उनके क्या कर्तव्य है? इधर वाले पॉइंट में बताना, ज्ञान वाली। एक जॉइंट फैमिली है जिसमें 10 लोग रहते हैं, उसमें एक सबसे बूढ़ा, फर्स्ट जनरेशन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे फोर्थ जनरेशन एक घर में रहती है, फोर्थ जनरेशन। तो क्या कहा? सबको जोड़ के रखना है, ये तो पॉइंट उसमें बोला ही नहीं पूर्वज की परिभाषा में, सबको एकजुट जोड़ के रखना, ये कितनी अच्छी पॉइंट है, सबको जोड़ के रखना और उसके विरोध में है सब में झगड़े लगाना। तुमको पता है तुम्हारे बारे में वो वैसा कह रहा था कल, तुमको पता ही नहीं वो ऐसा ऐसा कहता है तुम्हारे बारे में, विस्तार से जानना हो तो उधर आ जाना बाद में डिपार्टमेंट में, अच्छे से बताएंगे क्या क्या कहा। तो सबको जोड़ के रखना एक कर्तव्य, और अच्छा संस्कार मिलन की रास, सबको समझना, समझना और समझाना भी, कई बार उनको समझाना पड़ता है ना, अनुभव थोड़ी ना होता है उनके पास जीवन के, कुछ भी करते रहते हैं तो उनको समझाना भी पड़ता है, और जिम्मेवारी कौन सी, सबको संतुष्ट और डिसीजन, हाँ डिसीजन मेकर्स, डिसीजन लेना लेते हैं वो, कई सारे परिवार में उनसे पूछकर ही डिसीजन लिए जाते हैं, पहले बच्चे सब कुछ करते पर आदर इतना होता है कि फाइनल डिसीजन वो जो कहेंगे उनका, और वो सब मानते हैं। किससे करना और इक्वालिटी क्या नहीं, समानता क्या, सबको सबके प्रति समभाव, हाँ सबके प्रति समभाव, समदर्शी, वो फेवरेटिज्म नहीं होगा, वो पार्शियलिटी नहीं होगी, नेपोटिज्म जिसको कहते हैं वो वाला भाव नहीं होगा, और क्षमा करना, गलतियों को सुधारना, सिखाना, समझाना, और सहन क्या करना, उनके साथ एडजस्ट होना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, कभी कभी उनकी गालियां वो सब भी सुनना पड़ता है, उनको माफ भी करना पड़ता है बहुत बार, और क्या करना, उनको मारना, और हर जनरेशन के साथ एडजस्ट करना पड़ता है उसको, हर जनरेशन के साथ। कई सारी फैमिलीज में दादा के संस्कार और बेटे के, वो पोते के संस्कार बहुत मिलते हैं, बीच के जो रहते हैं ना उनसे इतने नहीं मिलते माँ बाप से, पर पोते के संस्कार दादा के संस्कार से बहुत ज्यादा मिलते हैं, पोते को नाना नानी ज्यादा पसंद आते हैं, वो बीच के जो होते हैं ना माँ बाप वो इतने नहीं पसंद आते है। प्याज कैसे जितने बहुत सारे सन्यासियों का जन्म ऐसे घर में हुआ है जहाँ माँ बाप जो थे वो बिल्कुल ही सांसारिक थे, और आध्यात्मिक वाले जो थे उनके नाना नानी थे, ऐसे बहुत सारे सन्यासी हैं। हाँ मतलब जो पोते जो है उनका ज्यादा आकर्षण उधर होता है, क्योंकि वैराग और अध्यात्म और ईश्वर प्रेम वो उनसे सीखते हैं, बीच वालों से नहीं सीखते। तो कौन सी पॉइंट थी ये? नहीं नहीं ड्यूटीज तो है फैमिली में, पर ये वाली कौन सी पॉइंट थी? हर जनरेशन के साथ एडजस्ट करना, क्योंकि उनके सामने तीन जनरेशन से अलग अलग अगर है तो हर एक के साथ एडजस्ट करना, और पूर्वज के कर्तव्य अच्छा दूरान दृष्टि, दूर दृष्टि होती है उनकी, तो वो सब आगे का भी सोचते हैं, और परिवार में बड़ों का कर्तव्य विशाल बुद्धि, परिवार में बड़ों का कर्तव्य बोल दिया समाक्षी लीडर हो गया। हाँ अपने कर्मों से सिखाते हैं, कर्मों से सिखाते हैं, और स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है उनको थोड़ा सा, जिससे वैसे विश्वास पैदा करना, ये कर्तव्य है विश्वास पैदा करना, उनको बचपन से ही अध्यात्म की ओर ले चलना सबको, जीवन क्या है वो समझाना, भावना बिठाना, ये सारे बड़ों के कर्तव्य है घर परिवार में। संस्कार निर्माण करना, संस्कार देना, ये सारे। और अच्छा, ये तो हो गया परिवार का। अभी बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं, तुम सब पूर्वज आत्माएं हो, पूज्य आत्माएं हो, संसार की आत्माएं दुखी है, अब हमें क्या करना है? प्रकाश देते रहो, और क्या करेंगे? हाँ, अपनी स्थिति को बनाओ। हम पूर्वज आत्माएं हैं तो देवेंद्र भाई हमें क्या करना है? अभी जो पॉइंट संसार बताए परिवार में, वो पॉइंट इधर लाओ, उनके साथ एडजस्ट होके चलना है, उनको समाना है। और हाँ, उसके दर्द को समझना है, एम्पैथेटिक बनना है, एम्पैथी निर्माण करनी है, समानुभूति। एक है सिंपैथी, सहानुभूति, दूसरा है एम्पैथी, समानुभूति। उसको जो दर्द फील हो रहा है उसको फील करना, वो जो है ना बैठ के जाने, क्या है वो कहावत है ना, बैठ के जाने पीड़ा, बैद क्या जाने किसकी पीड़ा, रोगी की पीड़ा, ऐसा कुछ एक कहावत है। तो वो फील करना उसको क्या हो रहा है, वो फील करना। और क्षमा करना, आत्माएं जो है संसार की आत्माएं, क्योंकि अज्ञानी है, आत्मा का परिचय नहीं है, परमात्मा का परिचय नहीं है, तो वो बहुत सारी कुछ सारी चीजें करेगी, पर ये दो चीजें उनके पास नहीं है, ये संसार कैसा है उनको पता नहीं है, ड्रामा है, इसके लिए गलतियां वो करेगी। इसके लिए उनको कितनी बार क्षमा करना, कितनी बार क्षमा करना है अशोक भाई, कितनी बार क्षमा करना है संसार की आत्माओं को? उनको सिखाना भी है, उनको समझाना भी है, उनकी पालना भी करनी है, गलतियां ठीक करनी है उनकी, और क्षमा भी करना है। और पूर्वज है तो पूर्वज आत्माओं के कर्तव्य, मुरली भी चली थी अभी अभी ना, कुछ मास पहले, पूर्वज आत्माओं के ऊपर लॉ और लॉ का बैलेंस सिखाना है। और क्या करना है पूर्वज आत्माओं को, मर्यादाओं का ज्ञान उन्हें देना है। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, अपने कुल और मर्यादाओं का ज्ञान उन्हें देना। और स्वस्थिति में टिकना, फिर वाणी में आना। और पूर्वज आत्माएं क्या करेगी, डिटैच रहना बहुत जरूरी, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अध्यात्म में सबसे पहला नियम तो सेल्फ सेफ्टी, विश्व का कल्याण बाद में, पहले खुद की रक्षा, और पहले स्वार्थ। स्वार्थ अर्थात स्व के अर्थ किया हुआ पुरुषार्थ, स्व के उन्नति के अर्थ किया हुआ पुरुषार्थ। पर जैसे कहा था स्वार्थ अर्थ शब्द गलत हाथों में पड़ गया, इसके लिए स्वार्थी की बहुत निंदा होती है संसार में। स्वार्थ है बहुत ही आध्यात्मिक शब्द, स्वार्थ अर्थात स्व के लिए, स्व की आत्मा की उन्नति या मुक्ति के लिए किया हुआ पुरुषार्थ अर्थात स्वार्थ। तो यह स्मरण कि हमें इस संसार को बचाना है, कल के मुरली में था ना, जागो और जगाओ, जागो और जगाओ, जागरण। उसके लिए हमें सोना नहीं, हमें मूर्छित नहीं होना है, हमें निरंतर जागृत रहना है। जागरण अर्थात आत्माभिमान। जागरण की परिभाषा क्या है, आत्माभिमान, सोल कॉन्शियसनेस इज अवेकनिंग। जितना हम आत्माभिमानी है अर्थात हम अमूर्छित है, जागृत है, सारे चक्र खुले हुए हो, चक्रों की बात फिर से, नीचे के तीन नहीं, ऊपर के चारों में बुद्धि रमन होती है। स्वदर्शन तो है ही है, स्वदर्शन चक्र में ये सारे चक्र आ जाते हैं, वो स्वदर्शन चक्र घुमाओ तो ये सारे चक्र अपने आप खुल जाते हैं। नहीं तो व्यक्ति की ज्यादा से ज्यादा मनुष्य जाति नीचे के तीन चक्रों में ही है, सबसे नीचे वाला मूलाधार। खाऊ खाऊ बस वही है, भोजन भोजन भोजन, फूड फूड का चक्र है वो नीचे वाला सबसे मूलाधार, जिसमें बस बुद्धि खाने में ही लगी रहती है, उससे ऊपर उठती नहीं है। जैसे वो इस सृष्टि में सबसे एक प्राणी है जिसे अमीबा कहते हैं, वो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो ऐसे बस डिवाइड होता है और एब्जॉर्ब करता है बस, तो उसका डिवीजन होते रहता है। वो अमीबा लाइक एग्जिस्टेंस अर्थात मूलाधार पर जीवन, उससे थोड़ा ऊपर जो स्वाधिष्ठान, वो फिर पावर डोमिनेशन, दूसरों के ऊपर डोमिनेट करना, उसमें पॉलिटिशियंस और वो सब आते हैं, मतलब हुकूमत करना किसी के ऊपर, अधिकार डिजायर इच्छा, ये सब थोड़ा ऊपर है। एक तो भोजन का तल है सबसे नीचे वाला मूलाधार, उसके थोड़ा ऊपर हो जाओ तो पावर सत्ता पोजीशन, ये थोड़ा उससे ऊपर है, बस ये इतना ही रहता है, जीवन यही घूमते रहता है। उसके थोड़ा ऊपर का तल मणिपुर चक्र, वो काम वासना का चक्र है, वो नीचे के दो से तो ऊपर है, नीचे के दो से वो ऊपर है, परंतु अध्यात्म में के लिए वो भी एक बाधा है, वो नीचे का ही है। ये नीचे के चक्र में लॉ ऑफ ग्रेविटी है जो नीचे का है एकदम, वो केवल फिजिकलिटी, केवल भोजन और ये सारी चीजें, उसका थोड़ा जो ऊपर है वो दूसरे पर अधिकार, दूसरों को डोमिनेट करना, वो पावर सत्ता। और तीसरा काम जो है उसमें या तो खुद सरेंडर होना, यूनियन, वो देह का तल है, परंतु वहां पर साइकोसोमेटिक तल है। नीचे वाले तल केवल केवल सबसे नीचे वाला केवल शरीर है, उसके ऊपर वाला थोड़ा सा इंटेलेक्ट है, उसमें उसके ऊपर वाला उसमें दिख रहा है वो प्रेम के जैसा, परंतु प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं, वो काम का तल है। उस काम के तल में डोमिनेट करना या डोमिनेट कराना, दोनों ही चीजें है उसमें, सरेंडर करना या दूसरों के ऊपर सरेंडर हो जाना, ये भी देह का तल है। ये नीचे के ही तीन तल है, ऊपर का जो तल है वो प्रेम का तल है, पर ये प्रेम का जो तल है इतना नाजुक है कि जो प्रेम होता है वो कब यहां से यहां चला जाता है पता नहीं चलता है। ऊपर से प्रेम दिखाई देता है स्त्री पुरुष में, परंतु वो स्त्री पुरुष का प्रेम कब काम में परिवर्तन हो जाता है चलते चलते उनको भी नहीं पता चलता। पहले तो दिखाई देता है बहुत आदर, बहुत सम्मान, बहुत प्यार, प्रेम दिखाई देता है। इंग्लिश में कहते हैं फॉल इन लव, वो फॉल होता है वहां पर तो वो यहाँ का जो तल है प्रेम का तल है, ये बीच का चक्र है, इसके नीचे तीन है ऊपर तीन है, नीचे को और ऊपर को जोड़ने वाला बीच का चक्र है, वो बीच का है। इसके लिए एक तो संभावना है नीचे जाने की या संभावना है ऊपर जाने की, परंतु अधिकतर वो नीचे ही चला जाता है ये जो अनाहत है ये प्रार्थना, प्रार्थना नहीं, अनाहत जो है वो प्रेम का चक्र है। इसके लिए उस प्रेम को यदि दिशा ना दी गई तो वो नीचे ही चला जाता है, चाहे कितनी भी आध्यात्मिक भावनाएं वो स्त्री और पुरुषों में, परंतु यहां प्रेम तक आते हैं, परंतु इतना डेलिकेट है कि ज्ञान तलवार चाहिए, अगर नहीं तो वो सीधा नीचे सरकता है और देह के तल पर पहुंचता है। काम सेक्सुअल डिजायर्स, ये मणिपुर चक्र का तल है, उसके ऊपर नहीं उठ पाता है वो वहीं रहते हैं। लोगों का संसार को अगर देखो तो इन तीन ही में घूम रहे हैं, बस भोजन सत्ता और काम, ये तीन ही तल है, वो नीचे के तल है तीनों, और वहीं घूमते रहते हैं गुल 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 गुल। हाँ, भोजन वाले से सत्ता वाले थोड़ा जो होते हैं वो केवल भोजन की चिंता नहीं करते इतना, उनको तो सत्ता चाहिए, ये फिर भी बहुत लोअर तल है। परंतु जो प्रेम वाले, प्रेम तो नहीं कहेंगे, काम वाले है, काम यह जो है देह का जो तल है, साइकोसोमेटिक है, वहां पर वो वाला उससे ऊपर है और प्रेम का चक्र है वो उसके ऊपर है, परंतु ये केवल प्रेम के भी ऊपर और तीन चक्र है, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, ऊपर के तीन और नीचे के तीन को जोड़ने वाला बीच का। तो ये बीच का जो है वो नीचे भी जा सकता है। विशुद्ध चक्र जो है वो प्रार्थना का है या कम्युनिकेशन का है या फिर बाह्य जगत और अंतर जगत को मिलाने वाला चक्र है, ये वाला विशुद्ध चक्र। इस तल पर रहने वाली आत्माएं प्रेम और प्रेम से भी ऊपर उठने लगती है, फिर धीरे धीरे यहाँ का तल अध्यात्म के जगत में जैसे एंट्री हो रही है यहाँ से इधर। अलग अलग कलर है एक एक चक्र के, और फिर यहाँ जब आता है ये आज्ञा चक्र है। यहाँ आज्ञा चक्र अर्थात एक तीसरी आंख, बी धाव अ सिंगल लाइट, बी धाव अ सिंगल आई, देन थाय बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। बाइबल में एक जगह लिखा है, जीसस क्राइस्ट के वचन है, वो कहता है कि तुम एक आंख हो जाओ बस, तब तुम्हारे शरीर में प्रकाश होगा। एक आंख, सिंगल आय, ये सिंगल आय, ये सिंगल आय जो है मतलब ये दो आंखें नहीं रही, एक सिंगल आय अर्थात यहाँ पर ज्ञान की पराकाष्ठा है। वो सब छोटे तलों से व्यक्ति ऊपर उठ गया है, उसकी बुद्धि अब वो भोजन फिर सत्ता फिर काम इन सब से ऊपर ऊपर उठी है। जो लोग नीचे के नीचे ही घूम रहे हैं उसी में घूम रहे हैं, यहाँ चेतना ऊपर ऊपर उठ रही है, पहुंच रही है हृदय, हृदय में भी प्रेम, वो प्रेम भी अब नीचे नहीं सरकता ऊपर ऊपर, वो वैश्विक हुआ है, सार्वभौम यूनिवर्सल और ऊपर विशुद्ध, विशुद्ध अर्थात प्यूरिटी पवित्रता शुद्ध, वो विशुद्ध चक्र यहाँ पर। वहां पर कम्युनिकेशन अब संपूर्ण सृष्टि के साथ हो चुका है, वो व्यक्ति और सृष्टि, समष्टि और सृष्टि एक हुई है वहां पर। तो वो जो तल है वो बहुत ऊंचा तल है ये वाला भी विशुद्ध, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, सब मेरे हैं, सब मेरे अपने हैं, ये भाव यहाँ प्रकट हो गया है। और उसके भी ऊपर यहाँ तीसरा नेत्र यहाँ खुल गया है, यहाँ से नीचे सरकना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ नीचे नहीं आती आत्मा। यहाँ तीसरी आंख जिसको बाबा कहते हैं, देह, देह का तल, वो मन का भी तल, वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस जो है वो सब खत्म हो गए, कभी खुशी कभी गम ये सब नहीं है, कोई क्रिटिसाइज करता है, किसी के प्रति पॉजिटिव का भाव नहीं है, किसी को अटेंशन नहीं चाहिए, हर व्यक्ति को अटेंशन चाहिए ना, सब मुझे देखे, सब मुझे देखे, चाहे कोई कुछ तो करे, क्रिटिसाइज तो करे, कम से कम क्रिटिसाइज करे, कुछ बोले, पर उसको प्रसिद्धि चाहिए, नाम चाहिए, उसमें आना चाहिए, चाहे गलत कारणों के लिए भी हो, अच्छे कारणों के लिए आ जाए तो बहुत अच्छा, पर नहीं आता है, अकेला नहीं रह सकता है वो, उसको कुछ तो कुछ चाहिए, अटेंशन चाहिए। ये सारे तल जो है ये फिर भी नीचे के ही तल है, ये सारे नीचे के ही तल है। तो यहाँ का तल ऊंचा तल है आत्माभिमानी का, और सबसे ऊंचा तल है सहस्त्रार। उस तल में पार्ट और होल एक है, जैसे ये सृष्टि जैसे नाटक एक खेल है, कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है यहाँ का, बहुत ऊंचा तल, सर्व चेतना का सर्वोच्च तल सहस्त्राल का तल है। यहाँ पे वो विकार वासनाएं देह ये सब मृत्यु ये सब खेल खेल लग रहा है। तो इन तलों पर रहना अर्थात ये पूर्वज सबसे ऊंचे तल जो पूर्वज स्थिति में रहना, सातों चक्र में ऊर्जा प्रवाहित होती रहे और नीचे की ऊर्जा ऊपर 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 उतर आती जाए, नीचे के चक्रों को हम छोड़ते जाए, वो भोजन का तल, वो इसका तल, वो उसका तल, ऊपर 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 ऊपर, ठीक है। दूसरी बात कहिए बाप को प्रत्यक्ष करने की, तो हम ये जो प्रश्न उत्तर कर रहे हैं उसको फिर से एक बार जो चालू करने वाले सीरीज, ये 17 तारीख से चालू करेंगे, 17 अप्रैल से, तो ये जो हिंदी ग्रुप है उसमें सोमवार से लेकर, तो सोमवार मंगलवार बुधवार, ज्वालामुखी योग वो किताब है यहाँ पर आपके पास, छोटी सी किताब है स्पार्क की, वो किताब हम चालू कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान हमने बहुत सुना पढ़ा, अभी थोड़ा सारी चर्चा योग पर करेंगे, कैसे योग को शक्तिशाली बनाया जाए। तो ये हफ्ते के तीन दिन जो होंगे वो ज्वालामुखी योग पर, गुरुवार को हम प्रश्नों से पार। बहुत सारे नाम आए थे परंतु ये नाम श्याम भाई ने सजेस्ट किया है तो इसको सर्व की सहमति से हमने चुन लिया है। तो इंग्लिश में होगा प्रश्नों से पार। तो इस प्रश्नों से पार सीरीज में बियॉन्ड क्वेश्चंस, वो इंग्लिश में दो सीरीज चालू कर रहे हैं। तो ये प्रश्नों से पार में हमने एक मेल आईडी तैयार किया है, selfprogress8@gmail.com। तो ये जो मेल है इस पर विश्व भर से प्रश्न आएंगे, तो वो जो प्रश्न है उनके ऊपर उत्तर यहाँ दिए जाएंगे और वो उत्तर संगठित उत्तर होंगे। अब इसमें और एक चीज है, इसमें हमने कुछ लोगों को चुना है जो यहाँ का सारा कारोबार देखेंगे, ठीक है, तो उनको हम हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर कहेंगे और रीजनल कोऑर्डिनेटर। तो इन चार लोगों के पास ये मेल दिया जाएगा और इसका मेल का पासवर्ड रहेगा। तो इनको क्या करना, इनके कर्तव्य क्या है, अभी तो सबसे पहले तो जो जो प्रश्न आएंगे, इसमें नाम है सुशील भाई, नागेश भाई और कमलेश भाई, ये हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर और रीजनल कोऑर्डिनेटर बना है सुमन बहन लखनऊ के। तो इन लोगों को क्या करना है, आप लोगों को प्रश्न जो आएंगे, ठीक है, उन प्रश्नों के ऊपर थोड़ा खुद चिंतन करना है, उस प्रश्नों को ठीक से ठीक ठाक करना है, थोड़ा सा रिपेयर, क्योंकि वो हमको यहाँ पर वो प्रश्न उसका जो है ठीक से लिखत हो, ताकि हम यहाँ उस प्रश्न को बोले और फिर इसके उत्तर निकाले। और ये जो चार लोग हैं ये इस प्रश्न के ऊपर पहले से ही थोड़ा चिंतन करें, पहले से ही गहराई से थोड़ा उसके ऊपर चिंतन करें, ताकि फिर आप यहाँ आकर भी बता सकते हैं या तो हम चर्चा करेंगे सीधा, कैसे भी चर्चा, या यहाँ आकर जो आपने चिंतन, जैसे किसी का कोई एक प्रश्न है तो उसके ऊपर चर्चा होगी संगठन में, संगठित उत्तर निकाला जाएगा एक। तो ये चार लोग इधर से हिंदी ग्रुप के लिए, और फिर फ्राइडे को हम 71 की मुरली रिवाइज कर रहे हैं, वो तो चालू रहेगा। सैटरडे को या तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो गया या फिर कोई एक्सपीरियंस मधुबन की कोई सीनियर भाई का। संडे को किसी टॉपिक पर क्लास, वो तो जैसी चल रही है वैसी। फिर इंग्लिश मुरली, इंग्लिश ग्रुप में मंडे को पावर ऑफ थॉट, ट्यूजडे को बियॉन्ड क्वेश्चंस, ट्यूजडे को एक दिन क्वेश्चन आंसर सीरीज होगा। इसमें चार कोऑर्डिनेटर हैं, डॉक्टर हीना बेन, श्याम भाई, श्रद्धा बेन और नागपुर का संदीप भाई। तो इन लोगों को जो ये मेल आईडी है, नया मेल बनाया है, क्या नाम है, क्या है उसका, अनलॉकिंग द इंटेलेक्ट, अनलॉकिंग द इंटेलेक्ट, इसका पासवर्ड आपको दिया जाएगा, वो बाद में आपको दिया जाएगा। तो ये मेल आपको रोज चेक करना है एक बार, और उसमें से जो भी प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों के ऊपर थोड़ा चिंतन करना है। इतने सारे लोग इसके लिए रखे हैं चार, क्योंकि कहीं कोई चला जाता है, कोई नीचे जाता है, कोई कहीं जाता है, इसलिए दूसरा उसको संभाल सके। तो वो जो प्रश्न है उन प्रश्नों के ऊपर थोड़ा मनन करना है, और उसमें हम केवल दो ही प्रश्न लेंगे इंग्लिश मंथन में, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। तो श्याम भाई, हीना बेन, श्रद्धा बेन और संदीप भाई। और फिर वेनसडे एंड थर्सडे मेरा बाबा, स्पार्क की किताब, फ्राइडे को किसी टॉपिक पर क्लास, संडे को शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस बाय डबल फॉरेनर्स, और सैटरडे को और संडे को अव्यक्त मुरली रिविजन।